जैसे दर्पण में दिखने वाला चेहरा वो भी हमारा ही दिखता है, दर्पण में है वो भी हमारा है, उससे अलग है वो भी हमारा है, और वास्तव में इन दोनों से हमारा रूप और ही अलग है। ऐसे जीव रूप से भी आप हैं और जीव को जो फल मिलता है वो फल भी आप हैं, इनसे अलग भी आप हैं, भोगता भी आप, भोग्य भी आप, और उनको भोगाने वाले भी आप, इनसे अलग रहने वाले भी आप, सब रूपों में आप रहते हैं। जिस प्रकार से एक ही डोरी है, उस डोरी को कोई तो सांप समझता है, कोई माला समझता है, कोई उसको टायर समझता है, कोई उसको और कुछ समझता है, तो वो एक ही समझने का फर्क अलग अलग है। ऐसे ही लोगों ने जितना रूप आपका बताया वो सब आपका सही है, फिर भी आप इन सबसे अलग के अलग है। सारे वस्तुओं में जितना रूप वो आपका, जितना नाम है वो आपका है, आपके महिमा के उस अमृत रस के अंदर अवगाहन करने वाले उन महापुरुषों को यदि उसका एक कण भी मिल जाता है तो उस कण के द्वारा देखे हुए, सुने हुए और याद किए हुए सारे संसार के विषय के जो सुखाभास है वो एकदम निवृत्त हो जाते हैं। और उसके बाद हे मधुमथन, स्वार्थ कुशल जो महात्मा है वो आपके चरणों में प्रेम करने लगते हैं, नयत्र पुनरयम संसार पर्यावर्त है, उसके बाद फिर संसार में आवागमन नहीं होता है। हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिनयन, हे त्रिविक्रम, हे त्रिभुवनात्म भवन, हे त्रिलोक मनोहर, आपकी ही विभूतियाँ हैं, दैत्य भी आपका रूप है, दानव भी आपका रूप है, हम भी आपके रूप है, लेकिन हम स्वार्थी है, हम स्वार्थपूर्ण हृदय से कह रहे हैं कि आप वृत्रासुर का वध कीजिए। माने ये वृत्रासुर आपसे अलग नहीं, आप ही का रूप है, लेकिन हम इससे बहुत ज्यादा कष्ट पा रहे हैं, अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसका भी आप वध कर दीजिए, हम आपके हैं, आपके चरणों में हमारा मन अटक गया है, इस कारण से हम आपके सामने अपनी बात कह देते हैं। मुस्कुराते हुए चेहरे से कितना सुंदर आपका चेहरा जिससे आप देख रहे हैं, बताओ हम देवताओं के मन में क्यों नहीं खुशी होगी आपका ये दिव्य रूप देख करके। जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय तो केवल आपका माया विनोद है, सब जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए आप ऐसा रूप बनाते हैं, वास्तव में आप इन सब से निरपेक्ष स्वानंद मूर्ति वाले हैं। हे परमानंद परब्रह्म परमात्मन, जिस प्रकार से अग्नि का छोटा सा स्फुलिंग यानी चिंगारी विशाल अग्नि को नहीं बता सकता, ऐसे ही हम लोग भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं, अतः आप हमारे मन की बात जानते ही हैं, हम हमारे मन की बात आपसे क्या कहें, आप परम गुरु हैं। चरण शत पलाशत छायाम, हम तो आपके चरणों की पलाश छाया में, चरण रूपी वृक्ष की छाया में आए हैं, आप हमारे संकट को दूर कीजिए, इस त्वष्टानंदन वृत्रासुर का नाश कीजिए। हे परब्रह्म परमात्मन, आप हंस के समान निर्विकार है, सारे संसार के परम साक्षी है, और संत महापुरुषों का आप हरदम संग्रह करते हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं, आप हमारी अंतिम गति हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। देवताओं की यह स्तुति सुनकर के भगवान क्या बोले, ओह भगवान बोले प्रीतो हम, वाह हे देवताओं तुम्हारी ये स्तुति सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ हूँ तुमने जो ये स्तोत्र पढ़ा है। अरे हम आज के बाद ये वरदान देते हैं कि इस स्तोत्र का कोई भी पाठ करेगा या कोई भी इस स्तोत्र को सुन लेगा, आत्म ऐश्वर्य स्मृति उसका खोया हुआ ऐश्वर्य है वो उसके याद आ जाएगा और अपने वास्तविक ऐश्वर्य में आकर स्थित हो जाएगा। नवेद कृपण श्रेय आत्मनो गुण वस्तु। देखो देवताओं, कभी कभी अच्छा वैद्य होता है वो रोगी के मांगने पर भी कुपथ्य नहीं देता, वो कहता है तुम इतने दिन तक रोटी मत ले लेना, जरा सा भी अन्न मत ले लेना, तो वो मना करता है, क्योंकि वो उसके रोग को जानता है। इसी प्रकार से मैं भी कभी कभी तुम्हारी चिकित्सा करता हूँ, जब तुम राज्य प्राप्त करते हो और घमंड करने लग जाते हो तब कुछ ऐसा करता हूँ तुम्हारा राज्य तुम्हारे से छिना देता हूँ। अब तुम सीधे हो गए, अब वृत्रासुर के विषय में तुम चिंता मत करो, दधीची ऋषि के पास जाओ और दधीची ऋषि से कहो कि महाराज आपका शरीर दे दो, आपकी हड्डियां दे दो, और विश्वकर्मा को रख करके साथ में लेकर के तुम जाओ, वो इनके द्वारा बहुत बढ़िया एक वज्र बनाएगा, उस वज्र से वृत्रासुर का वध होगा, ये हम तुमको उपाय बता देते हैं। ऐसा कहकर के भगवान वहीं पर अंतरित हो गए। भगवान अंतरित हो गए, अब सारे के सारे देवता गए दधीची ऋषि के पास, और दधीची ऋषि के पास जाकर कहने लगे महाराज आप अपना शरीर हमको दे दो। दधीची ने कहा क्यों भाई, इसका अर्थ हम मर जाए कि? हाँ महाराज आपका शरीर तो हमें चाहिए। अरे अरे भले आदमियों, तुमको शरीर चाहिए हमारा तो क्या हमको नहीं चाहिए? क्या हम इस शरीर से सुख नहीं लेंगे? अरे मरते समय में आदमी को इतना कष्ट होता है, दुस्सहस चेतनाप है, उसके अंदर इतनी चेतना का लोप होता है, बड़ा कष्ट होता है उसको। इसलिए भाई जो जीने की इच्छा रखने वाले हैं उनसे और तो कुछ मांग लेना, उनसे शरीर मत मांगना, कौन देगा भाई? भिक्षमाणाय विष्णवे, स्वयं स्वयं विष्णु भगवान भी आ जाए और कह दे तुम्हारा शरीर दे दो, तो भाई ऐसा कौन है जो उनको अपना शरीर दे देगा? ये तो वो बड़े मनोविनोद में दधीचि ऋषि ने कही थी बात। क्यों कही मालूम है? ये वही इंद्र है जिसने दधीचि ऋषि से कहा था कि महाराज यदि ब्रह्म विद्या इन अश्विनी कुमारों को दे दिया तो सिर काट दूंगा। और अश्विनी कुमारों ने कहा कि महाराज हमको ब्रह्म विद्या दे दीजिए कि दे कैसे देवे भाई, ब्रह्म विद्या दे देंगे तो हमारा सिर काट देगा ये इंद्र। तो कहा अच्छा ऐसा करो, आपका ये सिर तो हम अलग रख देते हैं और घोड़े का सिर ला करके आपके लगा देते हैं, उससे हमको उपदेश दे दो। ये बात ठीक है। अब वो तो बहुत बड़े शल्य चिकित्सक थे अश्विनी कुमार, उन्होंने बड़े विद्या से उस सिर को अलग कर दिया और घोड़े का सिर वापिस रख दिया, ब्रह्म ज्ञान ले लिया। इतने में इंद्र आए कि हम तो ये तुम्हारा सिर काटेंगे, दधीचि ने कहा काट दो, इसको तो मैं ही हटाना ही चाहता था, तुम एक बार सिर काटोगे तो घोड़े का सिर कट गया और अपना वास्तविक सिर वहां रखा हुआ था अश्विनी कुमारों ने वापस जोड़ दिया। कहते तुम तो हमारा सिर काटने के लिए आए थे, आज मांगने के लिए आए हो, बात क्या है? इंद्र ने कहा महाराज माफ करो, माफ करो, आप जैसे महापुरुष होते हैं वो तो सब प्राणियों पर कृपा करने वाले होते हैं। भवद विधानाम महताम पुण्य श्लोकेड्य कर्मणाम। देखो महाराज ये जो आपने बात कही कि अपना शरीर कौन देगा, ये सामान्य व्यक्तियों के लिए तो बड़ा दुष्कर काम है, लेकिन आप जैसों के लिए दुष्कर नहीं है। देखो पहली बात तो ये है कि लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं, ये केवल अपना ही अपना मतलब जान रहे हैं, अपने मतलब के लिए दूसरे को कष्ट होगा इस बात को सोचते ही नहीं, हम ऐसे स्वार्थी हैं। और दूसरे नंबर में आप जैसे भी यदि ऐसा सोचेंगे कि अपने दूसरे के कष्ट के लिए यदि हमारा थोड़ा सा भी जीवन काम आ जाए तो महाराज ये देवता हमारे पास आते ही क्यों, आपको भी हमारा कष्ट समझना चाहिए। ऋषि ने कहा बस यही बात है, हमारे कोई कष्ट नहीं है, धर्म की बात सुनने के लिए हमने तुमसे ये बात कही है। अरे शरीर तो एक दिन तुम मांगोगे तो जाएगा, नहीं मांगोगे तो जाएगा, शरीर तो हमारा जाएगा, नित्य रहने वाला नहीं है, लेकिन इस शरीर से कोई काम कर ले यही बड़ी बात है। तो लो भाई हमारा शरीर है, ये शरीर को तुम ले लो। और यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा सोचते ऋष्यति, शरीर के साथ ही मिलकर के प्राणी हर्ष और शोक को प्राप्त होता है। हमारा शरीर से कोई अहम भाव नहीं, कोई ममता वाली बात नहीं, जैसे हम अपनी दृष्टि से औरों का शरीर देखते हैं ऐसे ही उन औरों के साथ एक शरीर भी औरों में ही मिला हुआ औरों का ही है, परकीय वस्तु है, आप लोगों की वस्तु है, आप लोग ये शरीर ले लीजिए। ऐसा कहकर के दधीचि ऋषि अपने स्वरूप में स्थित हो गए, परब्रह्म परमात्मा का चिंतन किए, चिंतन करते करते उनका शरीर वहीं छूट गया। अब विश्वकर्मा जी ने उस शरीर से एक बहुत अच्छा वज्र बना लिया, वज्र बना करके इंद्र को दे दिया। अब इंद्र ने वो अपने हाथ में वज्र ले लिया, वज्र लेकर के और नर्मदा किनारे जाकर के उन्होंने ललकारा वृत्रासुर को, वृत्रासुर भी अपने दानवों को लेकर उपस्थित हो गया, बड़ा भयंकर वहां आपस में युद्ध हुआ। अब देवता लोग तो उत्साहित थे कि हमारे पास वज्र है और वृत्रासुर के पास में ये बात थी कि हमारे पास शक्ति है, दोनों की सेना में बड़ा उत्साह, बड़ा घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवताओं का उत्साह इतना बढ़ा कि असुरों को मार मार करके पीट पीट के बहुत दूर तक भगा दिया। असुरों ने देखा कि भाई हमारा प्रहार चल नहीं रहा, हमको मार रहे हैं पीट रहे हैं, वे रणांगन छोड़कर के जाने लगे। तब वृत्रासुर उनको रोक रहा है कि अरे अरे ठहरो, हे नमुचे क्या करते हो, हे पुलोमन, हे विप्रचित्ते, अरे संसार में जो पैदा हुआ है वो मरेगा, तुम दौड़ क्यों रहे हो, आगे जाकर कोई अमृत के कुंड में गिरोगे क्या? इसलिए युद्ध में भगो मत, युद्ध में मरोगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, मृत्यु दो ही श्रेष्ठ है, या तो युद्ध के अंदर मर जावे और या परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए मर जावे। इसलिए आपको इन दो के अलावा अब भगवान का भजन तो आप कर नहीं सकते, युद्ध मिलावा इसमें प्राण छोड़िए। उन्होंने वृत्रासुर की एक बात नहीं सुनी, वो तो भग रहे थे, चोट उनके लगी हुई बहुत ज्यादा। जब इस प्रकार से भगते हुए असुरों पर देवताओं ने प्रहार किए तो वह वृत्रासुर स्वयं सामने आकर देवताओं के सामने आकर खड़ा हुआ कि अरे क्या करते हो आप लोग, आप लोग युद्ध करने के नियम में अपरिचित हो। अग्रे तिष्ठ मात्रम में नचेत ग्राम्य सुखेश प्रिया, अरे जो आदमी युद्ध छोड़कर के भाग जाता है उस आदमी के, वो उस योद्धा के ऊपर कोई प्रहार नहीं करते हैं। तुमको लड़ना है तो आओ मेरे से लड़ो, मैं तुम्हारे सामने हूं, क्यों बिचारे भयभीत के सामने लड़ते हो, ऐसा कह करके। और वो अपना परिघ लेकर के, घोटा लेकर के और इंद्र के ऊपर प्रहार किया है। इंद्र ने आते हुए उस परिघ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो आकर के सीधा लग गया हाथी के, हाथी के बेचारा लहू लुहान हो गया, हाथी मूर्छित हो गया। इतने में ही हाथी के ऊपर उन्होंने हाथ फेरा इंद्र ने, जिससे हाथी को वापिस होश आ गया और अब इंद्र भी आकर खड़ा हो गया। अब ध्यान से सुने हो, वृत्रासुर के सामने, ठीक सामने अब इंद्र खड़ा है। अब वृत्रासुर कह रहा है, दृष्ट्या भवान में समवस्थित रिपुर यो ब्रह्मा गुरुहा भ्रातृहा च दृष्ट्या नृणोद्याहम सत्तमत्वया मत्सूल निर्भिन्न दृशद्भिदाचिरात। ओहो, बहुत दिनों से तलाश थी मुझे, क्या उस गुरु को मारने वाला, ब्राह्मण का मारने वाला, अपने अपने भाई को, मेरे भाई को मारने वाला वो इंद्र मुझे कभी मिले। बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश थी, आज मैं तुम्हें मार करके अपने भाई का ऋण उतारूंगा। तुम्हें पता नहीं है कितना भयंकर तुमने पाप किया है, जिसको तुमने गुरु बनाया और उसको तुमने विश्वास दिया और उसी का ही तुमने सिर काट दिया, और फिर तुम कहो कि हमको स्वर्ग मिले, ये तुम्हारे स्वर्ग में रहने की जगह है, स्वर्ग में रहने का काम है। इंद्र तुम अपने अंदर देखो, तुम्हारे अंदर से लज्जा खत्म हो चुकी है, तुम्हारी कीर्ति खत्म हो चुकी है, तुम्हारी दया खत्म हो चुकी है, तुम अपने कर्मों से राक्षसों के समान हो गए हो, इसलिए हमारे जैसे योद्धाओं के शूलों के द्वारा तुम्हारा वध करना आज बड़ा भारी पुण्य का काम होगा, और तुम्हारे साथ में जितने सहायक बने हुए देवता तुम्हारा पक्ष ले रहे हैं, इनमें से किसी ने भी तुमको सावधान नहीं किया कि भाई तुमने इसको आचार्य बनाया, गरज करके बनाया। तुम ही तो गए थे ब्रह्मा जी के पास विश्वरूप को आचार्य बनाने के लिए, उसने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम मुझे आचार्य बनाओ, अपनी मर्जी से तुमने बनाया और तुमने उसकी हत्या कर डाली। मैं उन्हीं त्वष्टा का बेटा हूं, मैं यज्ञ में से पैदा हुआ हुआ हूं, तो मैं अपने भाई का आज बदला लेकर के रहूंगा। सुरेश अकस्मान ने हिनोषि भद्रम पुरस्थिते वैरिणी मय्य मोघम। और इंद्र देखते क्या हो, मैं तुम्हारे सामने चेतावनी की बात कर रहा हूं, तुम खड़े हो, तुम्हारे पास वज्र है, दधीचि ऋषि का वज्र है, भगवान नारायण ने तुमको आदेश दिया है, और दधीचि ऋषि के पास जो एक शस्त्रों की और मंत्रों की जो शक्ति है उनसे बना हुआ ये अमोघ अस्त्र है, क्यों नहीं मेरे ऊपर प्रहार करते, जरूर मेरे पर प्रहार करो। तेनैव शत्रु जय विष्णु यंत्रो यंत्रितो यतो हरिर विजय श्री गुणास्तत है। देखो, जहां भगवान की कृपा होती है वहां विजय होती है, तुम्हारे पर भगवान की कृपा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। देखो, ये कृपा का स्कंद है ना, दया का स्कंद, पोषण का स्कंद, अनुग्रह का स्कंद है, तो असुरों को भी मालूम है कि देवताओं के ऊपर भगवान का बहुत अनुग्रह है। अच्छा, तुम तो अब मेरे पर प्रहार करने वाले हो, करो प्रहार, लेकिन देखो मेरी मृत्यु सामान्य योद्धाओं के समान नहीं होगी। मैं अपने मन ही मन में भगवान शंकरषण का ध्यान करता हूं, तुम्हारे वज्र के द्वारा वे मेरे प्राण नहीं लेंगे, वो मेरे अंदर रहने वाली जो विषय की इच्छा है उस विषय की इच्छा का छेदन करेंगे। तुम्हारे वज्र से मेरी विषय की इच्छा है वो नष्ट होगी, और बड़े बड़े मुनियों को जो गति मिली है वो गति मुझे मिलेगी। अरे इंद्र, जीने में भी मेरी विजय है और मरने में भी मेरी विजय है, मेरी विजय को तुम रोक नहीं सकते हो। पुंसांग कलयिकांत धियाम सुकानाम। अरे भगवान कितने दयालु होते हैं, जो अपने भक्त होते हैं उनको कभी संपत्ति नहीं देते, अपने भक्तों को अनुकूलता नहीं देते, क्यों कि उससे द्वेष, उद्वेग, हर्ष, घमंड, अभिमान, कली, लड़ाई, झगड़ा, इतने विकार पैदा होते हैं, इसलिए भगवान कभी भी किसी को इतनी अनुकूलता अपने भक्तों को नहीं दिया करते हैं। ये लोग देखो, संसार में तुम्हारे जैसे लोग धर्म, अर्थ और काम के पीछे पड़े हुए हैं, इंद्रियों के सुख के पीछे पड़े हुए हैं। हे इंद्र, भगवान अपने भक्तों को धर्म का फल और अर्थ का फल, काम का फल नहीं देते हैं, इससे मालूम चलता है कि भगवान बहुत दयालु है। ततोनु मेयो भगवत प्रसादो, भगवान बहुत दया करते हैं। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आपने संकल्प किया है कि दधीची के इस वज्र हड्डियों के बने हुए वज्र से वृत्रासुर का वध हो, बड़ी कृपा है आपकी, लेकिन मैं आपसे मरने से पहले एक वरदान चाहता हूं। मैं मरूं तो बहुत अच्छी बात है, मरूं, लेकिन एक तो आपके चरणों का स्मरण मेरे चित्त से नहीं जावे, और मरने के बाद जीऊं तो आपके दासों का दासों का दासों का कोई एक मुझे दास बना देना, ये मरने से पहले मेरी अंतिम प्रार्थना है, ये मैं आपसे चाहता हूं। ननाक पृष्ठम नच पारमेष्ठ्यम, मैं कोई स्वर्ग नहीं चाहता हूं, मैं ब्रह्मलोक नहीं चाहता हूं, मैं सार्वभौम नहीं चाहता हूं, मैं रसातल का स्वामी होना नहीं चाहता हूं, कोई मुक्ति भी नहीं चाहता हूं, मैं योग और सिद्धि भी नहीं चाहता हूं, हे भगवान केवल मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम मुझे प्रिय लगो, इसके अलावा मेरे अंदर में प्रेम की वृत्ति और जगह जावे ही नहीं। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथावत् सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विषितं विषन्ना मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। भगवान आप मुझे प्रेम की वृत्ति कैसे देना कि छोटे छोटे बच्चे हैं और उन छोटे छोटे बच्चों की माँ दूर गई है चुग्गा लेने के लिए, वो वृक्ष के कोटर में छोटे छोटे बच्चा अपने माँ की जैसी प्रतीक्षा करते हैं ऐसी आपकी प्रतीक्षा मेरे हृदय में हो, और गाय गई है जंगल में और बछड़े वहां पर बैठे बैठे अपनी माँ के लिए हरदम ढींकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, याद करते रहते हैं, ऐसे मैं आपको याद करता रहूं, और बहुत दूर देशांतर में गए हुए अपने पतिदेव के पीछे सती साध्वी प्रियतमा जैसे उनका स्मरण करती है, ऐसी प्रेम की वृत्ति आप मुझे दे दीजिए नाथ, बस उसके बाद मैं निहाल हो जाऊंगा। संसार चक्र में अपने कर्मों से मैं भटकूं तो मुझे संतों का समागम देना, जिससे उनके वचनों को सुनकर के मैं शरीर से घर से कुटुंब से मोह से धन से रुपए से पैसे से इंसाफ से अपना पिंड छुड़ा लूं। ऐसा उसने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद उसने कहा, देखो इंद्र, युद्ध का धर्म मेरा भी है, युद्ध का धर्म तुम्हारा भी है, जीतेगा कौन वो भगवान को मालूम है, और भगवान ने संकल्प कर लिया तुम्हारे विजय का तो भाई जीतोगे तुम, लेकिन मेरा जो धर्म है वो तो मैं निर्वाहित करूंगा ही, तुम भी तैयार हो जाओ। तैयार करके अपने हाथ में त्रिशूल लेकर के और उस त्रिशूल को जोर से फेंका गए, इंद्र इस त्रिशूल से तुम मरने ही वाला है। जो ही वो त्रिशूल आया, ऋषि मुनि देवता के आकाश में थे वो डर गए, इसी समय में उसने वज्र लेकर के उस त्रिशूल को उसी समय में नष्ट किया, और वो जो वज्र था उस वज्र का प्रहार करने वज्र का प्रहार उसके ऊपर किया तो कहते हैं उस समय में उसके एक भुजा टूट गई। छिन्नई का बाहु परिघेण वित्र, अपने हाथ में जो परिघ लिया हुआ था वो दूसरा प्रहार करने वाला था, इंद्र ने वज्र से उसका एक हाथ काट दिया, एक हाथ काट दिया तो उसके मन में बड़ी खुशी हुई कि शाबाश इंद्र तुम बड़े पराक्रमी हो, आखिर भगवान के वचन सत्य हो रहे, देखो मेरी भुजा कट गई, नहीं तो मैं तो रोज एक बाण बढ़ने वाला था, कटने वाला थोड़ा ही था, लेकिन भगवान की तुम्हारे पर कृपा है, मेरे पर भी कृपा है, चलो हमारी भुजा कटी। और उस समय में वह अपने उस वज्र को फिर दोबारा छोड़ा उसके ऊपर, जो तो उसके हाथ से वो छूट गया और उसके पास में पड़ा रहा वज्र वृत्रासुर के पास। अब इंद्र बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मेरे पास तो शस्त्र नहीं था, वो तो मैंने छोड़ दिया और वो भी उसके पास में जाके पड़ा है। वृत्रासुर ने कहा, अरे क्या करते हो, उठाओ वज्र, हम ऐसे नहीं मारेंगे, जो वज्र भगवान के संकल्प से मेरी मृत्यु का कारण है मैं भगवान के वचनों को सत्य करूंगा, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे भगवान के संकल्प की पूर्ति चाहिए, ले जाओ ये उठाओ अपना वज्र। तब उन्होंने वो वज्र उठा लिया, बड़ा लज्जित हुआ वो, अकादे कि ये जीना मरना विजय होना हारना ये सदा अपने हाथ की बात नहीं होती, भगवान कठपुतली के समान सबको नचाते रहते हैं, इसलिए ये तो युद्ध के अंदर एक जुआ ही है, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है, ग्लानी मत लाओ और बड़े प्रेम के साथ युद्ध करो। अब उन्होंने वो उठा तो लिया वज्र, उठा करके इंद्र ने कहा कि हे दानव, युद्ध करने का मेरे जीवन में बहुत बार असुरों के साथ मौका मिला है, लेकिन तुम्हारी जैसी ऐसी पवित्र बुद्धि आज तक मैंने किसी असुर की नहीं देखी है, तुम भगवान के इतने विलक्षण भक्त हो, सुरिदम जगदीश्वरम, जो सारे संसार के सुरिद है जगदीश्वर है, ऐसे भगवान में तुम्हारी इतनी विचित्र मति है, भगवान अतारसित मायाम, हमारे आंखों से देखने पर तुम असुर मालूम देते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय को टटोलते हैं तो तुम बड़े भारी महान भक्त हो, तुम महापुरुष हो। तुम्हारे भावों के सामने मैं नतमस्तक हूं वृत्रासुर, अब क्या करूं, युद्ध तो मुझे करना पड़ेगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि रजोगुण की प्रकृति वाले हो और तुम्हारी भगवान में ऐसी भक्ति है। ऐसी बात इंद्र ने कही। अब उन दोनों का फिर युद्ध हुआ। उस युद्ध में एक बहुत काला लोहे का घोटा लेकर के बाएं हाथ से इंद्र के ऊपर प्रहार करने वाला था कि इंद्र ने उसका दूसरा भी हाथ अपने वज्र से काट दिया। अब उसने अपना मुंह फैला करके होठ रख दिया जमीन पर और ऊपर का होठ रख दिया आसमान में, इतना बड़ा मुंह करके गया इंद्र की तरफ और हाथी सहित इंद्र को निगल गया। अब वो इंद्र उसके पेट में चला गया। पेट में गया तो इंद्र ने देखा कि अब क्या करें, तो वही नारायण कवच था, उस नारायण कवच का पाठ करना चालू कर दिया। उस नारायण कवच के पाठ के प्रभाव से अंदर वो मरा नहीं, न हाथी मरा न इंद्र मरा, और उसके पेट को फाड़ करके इंद्र वापस उसके सिर के ऊपर आकर के बैठ गए और उसी वज्र से उसके सिर के टुकड़े करते रहे। टुकड़ा करते करते बेचारे को एक साल बीत गई, तब जाके उसका पूरा माथा फूटा। देवताओं ने धुंधुभियां बजाई, फूलों की वर्षा की, सारे के सारे संसार के प्राणी आनंदित हो गए, लेकिन इंद्र का मुंह है वो लटक गया। इंद्र रोने लग गया, वज्र को एक तरफ रख दिया और सबके बीच में फूट फूट करके रोने लगा। देवताओं ने आकर के कहा कि हे देवराज, ये क्या कर रहे हो, विजय के अवसर पर आप रो रहे हो। इंद्र ने कहा कि रो क्या रहे, आज जैसी मेरी हार हुई है ऐसी हार मेरी कभी नहीं हुई। क्यों हुई हार, एक भक्त मेरे द्वारा मारा गया है, ये इतनी कितनी बड़ी भारी हार की बात है। बताया कैसे कैसे उसने भगवान शंकरसन की आराधना की, कैसे अच्छे अच्छे उसके भाव थे। पहले बार मैंने विश्वरूप को मारा था तो वो तो एक तरह से थोड़ा गलत काम किया हुआ था, थोड़ा देवतियों का पक्ष ले रहा था, इस कारण से तीन सिर मैंने उसके काटे, तो वो तो ब्रह्म हत्या मेरी चार भागों में विभक्त होकर के चली गई, चार पात्रों में। लेकिन अब इसकी ब्रह्म हत्या का हम क्या करेंगे, अरे ब्रह्म हत्या से क्या करेंगे, अपन सब मिलकर के
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा,
कीर्तन से शुद्ध हो जाते हैं। फिर तो आपने एक असुर को मारा है, आप कोई चिंता मत करो। इतने में ब्रह्म हत्या है, आग के रूप में भभकती हुई आई इंद्र की ओर लपकने लगी। इंद्र वहां से भागे और चले गए मानसरोवर में। मानसरोवर में एक कमल के अंदर जो नाल है उस कमल नाल में जाकर बैठ गए। अब ब्रह्म हत्या जल में तो जावे नहीं, जाएगी तो वह डूब जाएगी। लक्ष्मी जी ने इंद्र का पालन किया, 1000 वर्ष तक वे वहां रहे। तब तक नहुष ने स्वर्ग का शासन किया था। जब नहुष ने इंद्र की पत्नी इंद्राणी को अपनी पत्नी बनाना चाहा, तो स्वर्ग के ऋषियों ने मुनियों ने देवताओं ने उसको वहां से नीचे गिरा दिया और वो सर्प बनकर के पृथ्वी पर आ गया। अर्थ क्या है, स्वर्ग में भी चले जाओगे तो भी ये पाप की वृत्ति है वहां खत्म नहीं होगी। ये पाप की वृत्ति केवल मनुष्य शरीर में साधना से समाप्त हो सकती है, भगवान की कृपा से समाप्त हो सकती है, संत महापुरुषों की कृपा से समाप्त हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। स्वर्ग में चला गया, 1000 वर्ष तक रहा, लेकिन इंद्राणी के पीछे वही बात थी, तो वो वापस धकेल दिए गए, सर्प बनकर के पृथ्वी के अंदर पड़े रहे। इतने में इंद्र थे, इंद्र को बताया कि भाई इस प्रकार से ब्रह्म हत्या शांत हो गई है। तब वो मानसरोवर को छोड़कर के देवताओं के बीच में आए। अब इंद्र को वापस स्वर्ग का राज्य मिल गया, इंद्र की बड़ी पूजा होने लगी। इंद्र ने भी बड़े अच्छे अच्छे अश्वमेध यज्ञ करके ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित को कर लिया। इस प्रकार का ये बड़ा भारी आख्यान मैंने तो आपको सुनाया है। इस आख्यान को जो भी कोई सुनता है कहते हैं उसकी विजय होती है, और अपने जाने अनजाने किसी प्रकार का कोई पाप हो जाता है तो वो पाप भी इस आख्यान के सुनने से समाप्त हो जाता है। धन धान्य की वृद्धि होती है, यश बढ़ता है, निखिलाग मोचनम, सारे पाप दूर होते हैं और उसके उम्र में सदा कल्याण ही रहता है। वृत्रासुर वध की कथा सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे दयालो, ये वृत्रासुर तो बड़ा रजोगुणी था, तमोगुणी था, इसने असुरों का पक्ष लिया था, फिर भी भगवान नारायण में ऐसी उसकी दृढ़ भक्ति क्यों हुई? हमने देखा है कि शुद्ध अंतःकरण वाले बड़े बड़े ऋषियों के मुनियों के मन में भी ऐसा विलक्षण भक्ति भाव पैदा नहीं होता है। आप जानते ही हैं कि संसार में बहुत जीव जंतु हैं, उनमें केवल कल्याण प्राप्ति का अधिकार मनुष्यों को है। उन मनुष्यों में भी मुमुक्षु पुरुष, कल्याणकामी पुरुष बहुत कम है। कल्याण की इच्छा रखने वालों का भी कल्याण बहुत मुश्किल से होता है, और जिनका कल्याण हो जाता है उनमें भी भगवान नारायण के प्रति प्रेम हो जाना और भी दुर्लभ बात है। ऐसी स्थिति में वृत्रासुर के मन में, जो कि संपूर्ण लोगों को कष्ट देने वाला था, भगवान की भक्ति कैसे पैदा हुई? इस विषय में मेरे मन में बड़ा कौतूहल है, जानने की इच्छा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान बादरायणी ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, और संप्रश्नम, ऐसा उचित प्रश्न का ठीक समाधान करने के लिए वे आगे वचन बोलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो राजन, हमने एक बड़ा पवित्र इतिहास सुना है, देवल के मुख से भी सुना, नारद जी के मुख से भी सुना, और अपने पिता एवं गुरु व्यास जी से भी सुना। सूरसेन देश में एक चित्रकेतु नाम का राजा था, उसके राज्य में पृथ्वी सब प्रकार से अन्न घास दिया करती थी, प्रजा लोग बड़े प्रसन्न थे, परंतु चित्रकेतु के मन में प्रसन्नता नहीं थी। 1 करोड़ उसके स्त्रियां थी, लेकिन किसी के भी संतान नहीं। अब वो बेचारा संतान से रहित था। अब कितना ही बड़ा राज्य हो, कितना ही धन हो, कितना ही ऐश्वर्य हो, लेकिन मन में यदि किसी बात का अभाव खटकता है तो उससे तो वो आदमी दुखी होता ही है। एक बार अंगिरा ऋषि उसके महल में पधारे, अंगिरा ऋषि का बड़ा स्वागत किया। उसके बाद अंगिरा ऋषि ने पूछा कि राजन, क्या तुम्हारे प्रजा सब सुखी तो है? जिस प्रकार से राजा बर्ताव करता है उसका प्रभाव प्रजा पर पड़ता है, और जिस राजा की प्रजा सुखी है तो वो राजा भी सुखी रहेगा। मंत्री हैं, वो अच्छी सलाह देंगे तो राजा का काम बड़ा अच्छा चलेगा। नात्मन प्रियते नात्मा, आत्मन प्रियते नात्मा, ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रसन्न नहीं है, क्या बात है? कि मंत्रियों से कोई कष्ट तो नहीं है, प्रजा से कोई कष्ट तो नहीं है, क्या बात है? यदि कोई छिपाने लायक बात न हो तो हमारे सामने रखिए। चित्रकेतु ने कहा, महाराज आप तो सब जानने वाले हैं, केवल मुझसे आप सुनना चाहते हैं। महाराज, बड़े बड़े लोकपालों के पास में ऐसी संपत्तियां नहीं जो संपत्ति मेरे पास है। इतने अच्छे मंत्री हैं, प्रजा धर्म में लगी हुई है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है, इस बात को लेकर रात दिन चिंता रहती है। अंगिरा ऋषि ने उनको बहुत समझाया, परंतु चित्रकेतु के मन में पुत्र प्राप्ति की बड़ी इच्छा थी। तो अंगिरा ऋषि ने वहां पर एक यज्ञ किया, उस यज्ञ से त्वष्टा को प्रसन्न किया और उससे एक बहुत बड़ी अच्छी वस्तु प्राप्त की, खाद्य वस्तु प्राप्त की। यज्ञोच्छिष्टम अदा द्विजय, और उस वस्तु को यज्ञ के अंदर जो वस्तु निकली वह वस्तु ब्राह्मण अंगिरा ने राजा को दिया, कहा आपकी बड़ी रानी है उसको ये खिला देना, तुम्हारे लड़का होगा उससे तुम्हारे हर्ष भी होगा और शोक भी होगा। चित्रकेतु ने देखा कि हर्ष तो होगा ही, शोक होगा तो देखा जाएगा, यही आदमी की कमजोरी है, एक तरफ का विचार करता है दूसरी तरफ का विचार नहीं करता। तो उसने वो वस्तु ले जाकर बड़ी रानी को दे दिया। थोड़े दिनों के बाद मालूम हुआ कि बड़ी रानी के बालक होने वाला है, राजा के मन में अपार प्रसन्नता हुई और फिर समय पाकर एक बालक ने जन्म लिया। तो महाराज ने बहुत बड़ा भारी उत्सव किया, ब्राह्मणों को दान दिया, वासांस्याभरणानि च, वस्त्र है, आभूषण है, खूब लुटाए। राजा के मन में बहुत प्रसन्नता थी कि कृष्ण लब्ध है, माने हमें बड़ी कठिनाई से बेटा मिला है, इस कारण उसके प्रति स्नेह होना और उस बालक के लिए सर्वस्व लुटा देना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अब कृतज्ञता का भी सम्मान होने लगा, जिस बालक का जे वो बालक जिसके जिसका बेटा था उसकी उस माँ का बड़ा भारी सम्मान होने लगा। तो 1 करोड़ स्त्रियों में से एक का सम्मान होगा तो 99,99,999 तो बिचारी यूं ही रही। उन सब ने विचार किया कि देखो बेटा होने से इसकी पूछ हो गई, तो यदि बेटा नहीं रहेगा तो वापस हमारे ही समान ये हो जाएगी। तो उन्होंने जहर लेकर के और सोते हुए बालक को दे दिया, इससे वह बालक मर गया। इधर उसको मालूम नहीं उस कृतज्ञति को कि मेरा बालक मेरे सोतों के द्वारा मार दिया गया है। उसने अपने नौकरानी से कहा कि भाई जाओ और बेटे को लेकर के आओ, बहुत देर हो गई सोए हुए। अब वो धाय वहां गई, आगे जाकर देख रही है कि प्राणे इंद्रियात्म भिस्त्यक्तम, इसके न तो प्राण चल रहे हैं, न आंखें हिल रही है, न नाड़ियां चल रही है। इसको देखा तो एकदम चीख करके वो वहीं पर गिर गई और कहने लगी कि देखो आपका बालक है वो श्वास नहीं ले रहा है, ऐसा लगता है कि बालक का शरीर नहीं रहा। वो चिल्लाई तो उस समय में महारानी भी पहुंच गई, महारानी पहुंच गए, महाराज पहुंच गए, बहुत वहां पर विलाप करने लगे। और उस माँ के मन में बड़ा कष्ट हुआ, माँ कहने लगी अरे विधाता ये क्या तुमने बालकों का सा खेल किया है। यस्त्वात्म सृष्टिया प्रतिरूप मी असे, तुम अपनी सृष्टि के प्रतिकूल काम कर रहे हो, माने बड़ी उम्र वाले पहले मरते हैं छोटी उम्र वाले बाद में मरते हैं, ये तुम्हारी सृष्टि का नियम होना चाहिए, छोटी उम्र वाले पहले मर गए हम लोग बैठे हुए क्या कर रहे हो तुम। नहीं क्रमश्चे यदि मृत्यु जन्मन शरीर इनामस्तु तदात्म कर्म भी, यदि तुमने जन्म और मृत्यु का कोई नियम नहीं बनाया तो फिर ये आपस में मोह तुमने क्यों बना दिया। बेटा उठो तुम्हारे साथ ही खेलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पास में खड़े रो रहे हैं, मैं भी बिलख रही हूं, बहुत देर हो गई सोते सोते, उठो बेटा उठो बेटा, ऐसे करके वो विलाप कर रही है, प्रलाप कर रही है। चित्रकेतु भी बहुत बुरी तरह से रोने लग गया। इतने में ही वही अंगिरा और नारद जी दोनों आ गए। दोनों आकर के राजा को समझाते हैं कि राजन क्या बात है, किसके लिए रोते हो, मरे हुए के लिए आप रोते हो, बड़े आश्चर्य की बात है। आप गहराई से सोचो, एक नदी के वेग में कितने मिट्टी के कण साथ साथ चलते हैं और आगे जाकर वो बिछुड़ जाते हैं, ऐसे ही संसार रूपी एक नदी है, उसमें लोग आपस में मिलते हैं थोड़ी देर के लिए, कणों के समान सब बिखर जाते हैं। रोने बिलखने की क्या बात है, धान से धान पैदा होता है फिर पिछड़ा धान नष्ट हो जाता है। तुम है, हम हो, दूसरे जितने भी हैं, ये काल में तो बैठे हुए हैं। जन्म और मृत्यु के बाद हम नहीं रहेंगे, जन्म मृत्यु के बाद हम नहीं रहेंगे, जन्म से पहले हम नहीं थे, तो अभाव से ही तो हम आए हैं और अभाव में हम लोग जाएंगे, तो इसमें रोने भी लिखने की क्या बात है। देखो, इस देह का हम इतना ज्यादा मोह करते हैं, इस देह से एक बड़ी विलक्षण चीज है उसको हम भूल जाते हैं। वो विलक्षण चीज क्या है कि जिससे देह का ज्ञान होता है, जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है, वो नहीं मरता है। मृत्यु के और जो जानकारी में आने वाला वो मरता है। तो आप तो मृत्यु को जानने वाले हो, आपकी मृत्यु कभी होती नहीं, तो आप क्यों रोते हो, बिलखते हो। चित्रकेतु ने देखा कि बात तो सच्ची है, संतों के वचन होते हैं वो हृदय पर प्रभाव तो डालते ही है। आप चित्रकेतु आंख पूछ करके और बड़े गौर से देखने लगा कि आप दोनों हैं कौन, आप दोनों ज्ञान संपन्न कौन ब्रह्मिष्ट महापुरुष यहां आए हैं। मैं तो विषयासक्त प्राणी था, मुझ पर कृपा करने के लिए क्या कुमार सनत कुमार आए हैं, क्या नारद जी आए हैं, क्या ऋभु आए हैं, क्या अंगिरा आए हैं, क्या देवल आए हैं, दुर्वासा आए हैं, कौन है आप। जो भी है, मैं महाराज घर गृहस्थ के संसार के अंधे कुएं में गिर रहा हूं और आप मुझे प्रकाश से बचा रहे हैं। मैं तो अपने जीवन का परम प्रकाशक आपको समझता हूं। अंगिरा जी ने कहा कि राजन बहुत जल्दी भूल गए, बेटा देते समय में हम आए थे, आज बेटा लेते समय आ गए तो हमको भूल गए। हमारा नाम अंगिरा है और ये हमारे साथ आए साक्षात नारद जी हैं। आप इस प्रकार से पुत्र के शोक में डूबे हुए हो, इस कारण से हम तुमको शोक सागर से पार करने के लिए आए हैं। हमें तो मालूम था कि आज ही के दिन बेटा मरेगा, हमने तुमको पहले ही कह दिया था कि हर्ष और शोक देने वाला बेटा होगा। तुमने हर्ष की तरफ ध्यान दिया और शोक की तरफ ध्यान नहीं दिया, और हमने शोक की तरफ भी ध्यान दिया था, हर्ष की तरफ ध्यान नहीं दिया था, इसलिए हम यहां आए हैं। तदैव ते परम ज्ञानम, अब हम आपको परम ज्ञान देना चाहते हैं। देखो, अधुना पुत्रिणाम तापो भवतैवानुभूयते, आज तो आप एक पुत्र के लिए रो रहे हो, आप सावधान हो जाओ, आपके हाथ से एक दिन सारा राज्य जाएगा, आपके हाथ से सारी स्त्रियां छूटेंगी, आपके हाथ से सारा ऐश्वर्य छूटेगा और आपसे ये सारे विषय छूटेंगे, और तो और आपका ये केवल शरीर भी छूटेगा। इसलिए इस संसार के विषयों में अंधे मत हो। गंधर्व नगर प्रख्या स्वप्न माया मनोरथा, स्वप्न के द्वारा और माया के द्वारा, मनोरथ के द्वारा जो कुछ प्रतीत हो रहा है ये आपसे छूटेगा। आप बहुत स्वच्छ दृष्टि से देखिए, अयम ही देहनो देह, जितने जीवात्माएं उनका जो शरीर है, इस शरीर के ऊपर जब तक दृष्टि रहेगी तब तक ऐसे कष्ट आपको भोगते ही रहने पड़ेंगे। और अपने स्वरूप पर विचार करोगे तो वहां ये शरीर और शरीरी इन दोनों का भेद मिटेगा और उससे आपको परम शांति मिलेगी। राजन, इस कीचड़ से बाहर आओ, हम तुमको एक बहुत दिव्य उपदेश देना चाहते हैं, एक ऐसा दिव्य मंत्र देना चाहते हैं जिससे तुम भगवान शंकरषण को प्राप्त हो जाओ। भगवान शंकरषण वे है राजन जिनकी पूजा स्वयं महादेव करते हैं। कल आपने सुना था ना कि इलावृत खंड में भगवान शंकर शंकरषण की पूजा करते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि वही शंकरषण भगवान है जिनका ब्रह्मा की सभा में स्वयं नारद जी ने वर्णन किया था। वही नारद जी यहां आकर चित्रकेतु को कहते हैं कि शंकरषण भगवान की प्राप्ति का बड़ा सुंदर तुमको मैं मंत्र सुनाता हूं। सद्य स्तदीयम अतुलान अधिकम महत्व प्रापुर भवान अपि परम नचिराद उपैति, और उसकी जो महित्व माने महिमा है वो आपको बहुत जल्दी ही मालूम चल जाएगी। चित्रकेतु कभी बेटे को देखे और कभी नारद जी को देखे। अब उसके मन में आया कि बेटा ठीक हो जाए तो मैं नारद जी के पास जाऊं, नारद जी का चेला बन जाऊं, तो इधर हमारे बेटा मर गया इसका दुख है, वो इधर उधर देखे नारद जी समझ गए कि जब तक संसार की वास्तविकता का ज्ञान इसको नहीं होगा, इसके हृदय में नहीं होगा, तब तक ये अधेड़ बुन में रहेगा। तो नारद जी ने अपने योग बल से उस मरे हुए बालक को जगाया और जगा के कहा, अरे जीवात्मन, तेरे माँ बाप, तेरे मित्र तेरे पास में बैठे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तुझे शर्म नहीं आई, तुझे विचार नहीं आया? अभी तो तुम्हारी कितनी आयु हो सकती है, तुम उस शरीर को छोड़कर चले गए, भुंक्षो भोगान, भोगों को भोगो, और पितृपत्तान अधितिष्ठ निपासनम, तुम्हारे पिता महसी चला आ रहा राज सिंहासन, इसका भोग करो, उसके बाद मरना, पहले क्यों मर गए? अब ध्यान देना, उस जीवात्मा ने उत्तर दिया है। जीवात्मा कहने लगे, महाराज, मेरे आपने माँ बाप इनको बताया है तो मेरे तो न जाने कितने जन्म हुए हैं, कितने मेरे माँ बाप हुए हैं, मैं इन दो माँ बाप में फंस जाऊंगा, यदि और मुझे आप माँ बापों की याद दिलाओगे, हमारे तो हजारों लाखों माँ बाप होंगे, मैं किन किन के लिए रोऊंगा और किन किन के साथ स्नेह करूंगा? मैं अपने कर्मों से भटकता हुआ कभी देवताओं के वहां गया, कभी पक्षियों के यहाँ गया, कभी मनुष्यों के यहाँ आया, कोई मेरा भाई बन गया, कोई मेरा मित्र बन गया, कोई मेरा उदासीन बन गया, कोई माता पिता बन गए। महाराज, सर्वे एव ही सर्वेशां भवन्ति क्रमशो मिथ, सभी लोग सभी जगह प्राय करके एक दूसरे के कुछ न कुछ लग ही जाएंगे, और ये जीव सबके बीच में घूमता रहता है, किसी का कुछ भी नहीं रहता। बाजार में महाराज रुपया है, पैसा है, घूमता रहता है, किसी के पास नहीं रहा। रुपया एक के पास आया, खरीदार के पास रुपया था, वो फिर बेचने वाले के पास चला गया, बेचने वाले के पास रुपया था, वो किसी और के पास चला गया, किसी और के पास था, वो और के पास चला गया। रुपया किसी के पास नहीं ठहरता है, और उस रुपये से सब झूठा ही प्रेम करते हैं। ऐसे ही शरीर आदि किसी के पास नहीं रहते और शरीर आदि से सब प्रेम करते हैं। तो महाराज, मेरा स्वरूप तो नित्य माना गया है, शरीर को छोड़ देने के बाद भी मैं अपने आप का त्याग नहीं कर सकता हूं, तो कौन किसका माँ बाप, कौन किसका बेटा, कौन किसका भाई, कौन किसका बंधु, ये केवल मनुष्य की कल्पना है, स्वप्न की सृष्टि के समान संबंध है, इनमें कोई यथार्थता नहीं है। ऐसा कहते ही वो जीव वहां से अदृश्य हो गया। अदृश्य हुआ और चित्रकेतु को ज्ञान हुआ कि ओहो, ये संसार हमसे प्रेम नहीं करता है, हम ही संसार से प्रेम करके इसमें फंसते हैं। ओहो, ये दो तरफ का प्रेम नहीं है, एक तरफ का प्रेम है, और भगवान ऐसे हैं जो हम उनसे प्रेम नहीं करते परंतु वो हमसे प्रेम करते हैं। नारद जी से कहा, महाराज, अब तो आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए, शंकरसन भगवान की प्राप्ति का जो उपाय हो सो बताइए। इतने में ही वो 99,999,999 रानियां आई, उन्होंने देखा कि भाई हमारे पतिदेव तो अपना कल्याण कर लेंगे, और जिसका बेटा मरा वो कृतद्युति भी नारद जी के उपदेश से ज्ञान प्राप्त कर लेगी, पाप किया हमने और हम तो यूं ही रह जाएंगी। वो सब के सब जाकर ऋषि के चरणों में गिर गई, कहने लगी, महाराज, हमारे द्वारा बड़ा भारी पाप हो गया। देखो, भगवान के सामने कोई अपने द्वारा किया हुआ पाप है वो प्रकट कर देता है, भगवान तो जानते ही है, प्रकट करो चाहे न करो। अथवा जो कोई पाप दूर करने वाले ऐसे संत महापुरुष हैं जिनके ज्ञान से हमको अध्यात्म का मार्ग मिलता है, उनके सामने अपना पाप प्रकट कर देते हैं, तो पाप प्रकट करते ही पाप हमारे यहां से निकल जाता है। प्रकट करने का अर्थ वो निकल गया, इसलिए अपना पाप प्रकट कर देना चाहिए। तो वे स्त्रियां सब की सब नारद जी के पास आई और कहने लगी, महाराज, इस प्राणी को हमने मारा है, हमने जहर दिया है, एक बालक को मारने का जो भयंकर पाप लगे वो हमको लगेगा। तो कहा, कोई बात नहीं, आपने पाप हमको बता दिया है, तो बाल हत्या व्रतम चेरु, हम आपके लिए ऐसा अनुष्ठान करेंगे जिससे इस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे उस बाल हत्या का प्रायश्चित करवा दिया और चित्रकेतु से कहा, तुम अब चलो हमारे साथ, हम तुमको भगवान शंकरसन का मंत्र देते हैं। उसको अब घर गृहस्थी बड़ी बाधा देने लगी, वो घर छोड़ करके नारद जी के साथ गया। नारद जी ने फिर उसको बैठा के कहा, देखो, हम मंत्र सुनाते हैं, ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाया निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। कहते ये मंत्र है और नमो विज्ञान मात्रा हे भगवान वासुदेव हे प्रद्युम्न हे अनिरुद्ध हे संकर्षण हे ज्ञान मात्र हे आनंद मूर्ति हे आत्माराम हे परमात्मन हे शांत स्वरूप निवृत्त द्वैत दृष्टये आपकी दृष्टि द्वैत से सर्वथा निवृत्त हो चुकी है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। वाणी आप तक पहुँचती नहीं, मन वहाँ पहले ही रुक जाता है। आपका कोई नाम नहीं, आपका कोई रूप नहीं, कार्य कारणात्मक जगत से आप परे हैं। आपके अंदर सारा जगत है, जैसे मिट्टी के अंदर सारे बर्तन हैं और बर्तनों में मिट्टी है, जगत में आप हैं, आप में जगत है, लेकिन फिर भी मिट्टी मिट्टी में ही है, बर्तनों में नहीं है। ऐसे ही आप अपने में ही हैं, आप सृष्टि में नहीं है। देखो बर्तन नष्ट हो जाता है लेकिन मिट्टी नष्ट नहीं होती, जगत नष्ट हो जाता है आप नष्ट नहीं होते। आप वैसे के वैसे व्योमवत आकाश की तरह से निर्विकार रहते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे महापुरुष हे महाविभूतिपति, आप संपूर्ण भक्तों के साथ में विराजमान हैं और आपके चरण कमलों का जो पराग है वह उन भक्तों को मिलता है और सारे भक्त आनंदित होते हैं। ऐसे सबको आनंद देने वाले भगवान को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से उन नारद जी महाराज ने ये मंत्र दिया और वे अंगिराज ऋषि के साथ में वापिस स्वयं भुवन प्रभु ब्रह्मलोक में चले गए। चित्रकेतु ने नारद जी महाराज के कहे अनुसार 7 दिन तक इस मंत्र का जाप किया। इतने में ही सप्ताहम अब भक्षा केवल जल पी करके किया तो 7 दिन के बाद उसको स्वाभाविक ही विद्याधरों का आधिपत्य मिल गया और फिर उसको भगवान संकर्षण के पावन दर्शन हो गए। संकर्षण के दर्शन किए कि आहा भगवान संकर्षण है, ये मृणाल के समान गौर वर्ण वाले हैं। देखो भगवान के रूप भी विचित्र है, हो बैकुंठ में तो श्याम वर्ण वाले रहते हैं और सर्प के बीच में सैया बनाकर सोते हैं और सर्प के बीच में रहते हैं तो भगवान गौर वर्ण वाले हैं। ये भी भगवान के रूपों की बड़ी विचित्र बात है। मृणाल गौरम शितवास सम स्फुरत, भगवान के वस्त्र है बिल्कुल सफेद है, किरीट केयूर से वे विभूषित है, प्रसन्नता से उनका मुख कमल खिला हुआ है, सिद्धेश्वरों से घिरे हुए हैं, उनके दर्शनों से सारे पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। भगवान के स्वरूप को देखा, भगवान के चरणों को देखा, भगवान के मुख कमल को देखा तो चित्रकेतु बहुत हर्षित हो गया। प्रहृष्ट रोमा नर्मदादि पुरुषम, वह प्रहृष्ट रोमा होकर अनमद माने उसने आदि पुरुष को नमस्कार किया और नमस्कार करके हाथ जोड़ के कि कुछ बोलना चाहा पर नैवा शकत, वो बोल नहीं सका, प्रेम के अंदर वाणी डूब गई। जैसे जल के अंदर आदमी डुबकी लगा हुआ फिर बोल नहीं सकता, ऐसे ही प्रेम रूपी रस में जब वो भक्त डूब जाता है तो उसकी वाणी निकलती नहीं है। फिर बड़ी मुश्किल से अपने मन को बाहर करके और सर्वेंद्रिय बाह्य वर्तनम, अपने इंद्रियों को थोड़ा बाहर करके हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगा। चित्रकेतु कहने लगा, महाराज आप सारे संसार को जीते हुए हैं लेकिन संतों ने महात्माओं ने आपको जीत लिया है, आप उनके सामने हार जाते हैं। विजितास्ते पिच भजताम अकाम आत्मनाम यह आत्मदो अति करुण है। और आप भी महाराज उन भक्तों के सामने तो बिल्कुल घुटना टेक देते हो, चित हो जाते हो, जो आपसे लेश मात्र भी कामना नहीं करते हैं, उनके सामने तो महाराज आपकी बोली बंद हो जाती है। आपका पराक्रम क्या बतावे, जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय ये सामान्य पराक्रम नहीं है आपका। ये ब्रह्मा आदि मिथ्याई अभिमान करते हैं कि हम संसार को पैदा करते हैं और हम संसार का संहार करते हैं। नहीं नहीं, परमाणु से परमाणु आप छोटे से छोटे आप हैं, अणु रणियान आप हैं और महतो महियान आप हैं, संसार के आदि में भी आप हैं, अंत में भी आप हैं और अंतर्वर्ती मध्य में भी आप हैं। इसलिए सत्य रूप से केवल आप ही है। सत्य वो होता है जो आदि में रहता है और अंत में रहता है, वो सत्य होता है और वो मध्य में भी है। तो पृथ्वी आदि के द्वारा जो ये आपने अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं, सहांड कोटि कोटि भी करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बना करके भी आपका उनको धारण करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये मानव शरीर प्राप्त करके जो विषयों की इच्छा रखने वाले लोग हैं, हम तो इनको आकृति से मनुष्य कहते हैं, वास्तव में वो पशु के समान नर पशु हैं। वे जो आपकी तो उपासना करते नहीं और दूसरे दूसरे देवताओं के पिछल्लगु होते हैं कि हमारा ये काम बना देंगे, हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा ये काम हो जाएगा। महाराज, जिस प्रकार से राजा के नष्ट हो जाने पर वो राजकुल नष्ट हो जाता है, ऐसे ही आपसे विमुख हो जाने के बाद उन देवताओं में भी कोई शक्ति नहीं है कि उस जीव को आनंद प्रदान कर सके, लेकिन कामना के कारण से बेचारे लोग अंधे हुए हुए रहते हैं। और जो भी कोई व्यक्ति कामना पूर्वक आपके पास भी आता है तो आपकी कामना में एक बड़ी विचित्र बात है, आप उसकी कामना को पूरी कर देते हैं लेकिन फिर उस भक्त को होश आता है कि अरे राम राम राम, भगवान का उपयोग कामना की पूर्ति में नहीं लेना चाहिए, तो वो निष्काम हो जाता है। काम त्वयि रचिता न परम रोहन्ति यथा करम्भ बीजानि, जैसे बीज पका दिए जाए फिर उनकी खेती नहीं होती, ऐसे कोई आपका प्रेम, आपसे प्रेम करता है कामना पूर्वक ही सही, संसार के काम बनाने के लिए भी आपका प्रेम, आपसे प्रेम करता है, तो भी वो प्रेम उसको निष्काम बना करके छोड़ता है। संसार के उद्धार के लिए आपने ये भागवत है सनत कुमार आदि ऋषियों को सुनाया है। इस भागवत में तरह तरह से लोग अपनी अपनी मति लगाते हैं, लेकिन भागवत एक ऐसा है, इसको हमने अच्छी तरह से जान लिया, इसलिए बोलते हैं कि त्वम अहम इति तव इति न। भागवत के अंदर जिसकी श्रद्धा हो जाती है, आपके ज्ञान में जिसकी श्रद्धा हो जाती है, ये मैं हूं, ये तू है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये भेद बुद्धि उसकी समाप्त हो जाती है। महाराज, वास्तविक धर्म क्या है? वास्तविक धर्म यह है कि जिससे किसी को भी कष्ट न हो। यदि अपने को, हमको कष्ट होता है तो आपको कष्ट होता है, और यदि दूसरे को कष्ट दिया जाता है तो अधर्म होता है। जितने अनुष्ठान है, आपसे विमुख होने पर जितने कर्म किए जाएंगे, या तो वो कर्ता दुखी होगा और या कर्ता जिसके लिए करता वो दुखी होगा, दोनों से ही अधर्म होगा। लेकिन भागवत धर्म के अनुसार चलेगा तो न तो कर्ता को दुख होगा न और किसी को दुख होगा। ऐसी विचित्र आपने ये भागवत में बात रखी है। महाराज, भागवत से लोगों के पाप दूर हो जाएं, आपके दर्शन से पाप दूर हो जाएं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बड़े बड़े पापियों ने आपका दर्शन नहीं किया, लेकिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसा नाम लिए है तो वे चांडाल से चंडाल व्यक्ति भी महान पवित्र हो गए हैं। इसलिए देवर्षि नारद ने जो कुछ कहा था वो मिथ्या कैसे हो सकता है? हे अनंत, ये जगत आपका रूप है, आप हमारे परम गुरु हैं। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें निकलती हुई सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकती, ऐसे जगत को हम लेकर के आपको कैसे जान सकते हैं? आपको बारंबार नमस्कार है। दुर्वसितात्म गतये, आपकी गति को जानना किसी के बस की बात नहीं है, जो कुयोगी है वो आपको प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आपके श्वास से सारा संसार जी रहा है, आपके प्रकाश से प्रकाशित है, आप संपूर्ण भूमंडल को अपने सिर के ऊपर ऐसे ही धारण किए हैं जैसे सामान्य व्यक्ति अपने सिर के ऊपर सरसों का दाना रख लेता है फिर भी उसे किसी प्रकार से कष्ट नहीं होता। ऐसे चित्रकेतु की प्रार्थना सुनी, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, देखो चित्रकेतु, नारद और अंगिरा ने जो तुम्हें ज्ञान दिया था उस ज्ञान से मैं अब संसिद्ध हुआ हूँ, तुमने मेरे दर्शन प्राप्त किए हैं। देखो, मेरा दो प्रकार का रूप है, एक तो शब्द ब्रह्म मेरा रूप है, एक परब्रह्म मेरा रूप है। महात्माओं से शब्दों के द्वारा सुन करके जो साधक जैसा मेरे विषय में निश्चय करता है वो निश्चय उसका यथार्थ होता है, और मैं अनुभव में जैसे उसके सामने आता हूँ वो भी यथार्थ होता है। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म मम उभे शाश्वती तनु, ये दोनों मेरे शरीर हैं। तो तुमने महापुरुषों से मेरे विषय में सुना, सुनकर के तुमने कल्पना की कि ऐसे वो है, तो तो वो आदि जैसे बात आई वो कल्पना है, वो मिथ्या कल्पना नहीं है, वो सत्य है, क्योंकि मैं सब जगह व्यापक हूं तो उसकी कल्पना में भी हूं, उसके कल्प्य में भी हूं, क्योंकि मैं कल्पक में हूं, कल्पना में हूं तो कल्प्य में भी मैं हूं, अतः मेरे होने में कोई संदेह नहीं है। देखो बुद्धि आदि की जागृत आदि अवस्थाएं होती है, लेकिन इनके जागने वाले का, इसको देखने वाले की अवस्थाएं नहीं होती है। इसी प्रकार सब रूपों में मैं रहता हुआ भी इन सब से अलग का अलग रहता हूं। देखो चित्रकेतु, जो व्यक्ति मानव शरीर प्राप्त किए है, ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने का बहुत अनुपम क्षेत्र है, इसको प्राप्त किए है, ऐसे मानव शरीर में आकर के भी कोई आदमी यदि मुझे नहीं जानता है, अपने स्वरूप को नहीं जानता है, ऐसे व्यक्ति को कहीं पर भी वो भटक ले, कहीं पर भी चला जाए, उसको शांति तो मिलने वाली नहीं है। इसलिए लोग सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, दुख से मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, पर ये नहीं देखते कि हमको असली सुख कहाँ मिलेगा, असली दुख क्यों आ रहा है, असली दुख की निवृत्ति कहाँ होगी, इधर वो विचार ही नहीं करते हैं। इसलिए मैं तो सब मनुष्यों को सावधान करते हुए कहता हूं कि भाई आप लोगों का सबसे बड़ा स्वार्थ है परमात्मा का और आत्मा का एकता का अनुभव करना। ये यदि मनुष्य ने काम कर लिया तो सबसे बड़ा स्वार्थ सिद्ध हो गया, और यदि ये काम बाकी रह गया तो राजन सब कुछ उसका बाकी पड़ा है, चाहे कितना ही वो काम कर ले उसका कोई काम सिद्ध नहीं हुआ है। इस प्रकार से भगवान कहकर के अंतरित हो गए। भगवान के चले जाने के बाद, अंतरित होने के बाद, उसने भगवान को प्रणाम किया, जिस दिशा में भगवान ने दर्शन दिए थे उस दिशा में प्रणाम किए, और चित्रकेतु विद्याधरों का जो स्वामी था वो आकाश में विचरण करने लगा। बहुत लंबे समय तक वो विद्याधरों का अधिपति बना हुआ इधर उधर घुमा करता था। एक बार की बात है, वह घूमते घूमते अपने विमान में बैठा हुआ घूम रहा था कि वहां शंकर भगवान को देखा कि ब्रह्मवादियों की एक सभा है, सिद्धचारण उनके बीच में, सिद्धचारणों के बीच में वो बैठे हुए है। अब ध्यान देना हो, पोषण स्कंध में कैसे भगवान पोषण करते हैं, कितनी दया करते हैं भगवान। तो शंकर भगवान मुनियों के बीच में बैठे हुए हैं और सिद्धचारणों के बीच में बैठे हुए हैं, बड़ी भारी मुनि संसदी, एक संसद लगा हुआ, लोगों का समुदाय इकट्ठा हुआ हुआ है, उन सब के बीच में शंकर भगवान ने अपने पास में पार्वती जी को बैठा रखा है। जब पार्वती जी को बैठे हुए देखा और आकाश से उस चित्रकेतु ने देखा, तो देखते ही आकाश में रहने वाले उस चित्रकेतु ने जोर से शब्द करते हुए कहा कि ओहो, देखो तो सही, ये धर्म के वक्ता हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ये धर्म बताने चले हैं, इनको अभी सभा में बैठने के कायदे का भी ज्ञान नहीं है। कोई भी मूर्ख से मूर्ख भी व्यक्ति होगा तो लोगों के बीच में अपनी स्त्री से बात करने में भी शर्म करेगा, ये तो सबके बीच में अपनी स्त्री को बैठा करके सबके बीच में बात कर रहे हैं। इस चीज का चित्रकेतु को पता ही नहीं था कि किस रहस्य से क्या बात करते हैं। अरे भगवान शंकर के पास में यदि पार्वती जी बैठी हैं और वो ब्रह्म का चिंतन का ब्रह्म स्वरूप बता रहे हैं, तो ये बड़े आश्चर्य की बात थी, चित्रकेतु क्या समझे। तो चित्रकेतु ने कहा, अयम महाव्रत धरो विभर्ति सदसी स्त्रियम, क्या यही सबसे बड़ा व्रत ये बता रहे हैं लोगों को कि भरी सभा में स्त्री के बीच में बैठना चाहिए, स्त्री के साथ बैठना चाहिए। उसका तो ऐसा कहना हुआ, वो शब्द सुन लिए पार्वती ने, सारी की सारी सभा स्तब्ध रह गई कि देखो शंकर जी के लिए कैसे कैसे शब्द बोला गया है। उस समय में अपने पति का अपमान वो पार्वती जी सह नहीं सकी, और तत्काल पार्वती ने सुनाते हुए कहा, क्यों भाई तुम शंकर से भी बड़े हो, महादेव से भी बड़े हो, जगदीश्वर से भी बड़े हो, और हम लोगों के तुम कर्मों को देखकर दंड का विधान बनाना चाहते हो, हम लोगों की निर्लज्ज क्रिया को देख करके तुम लोगों को बड़ी दया आ रही है आज, क्योंकि धर्म की ठेकेदारी तुम्हारे पास ही है ना। ब्रह्मा जी भी धर्म नहीं जानते जो कि इनसे ज्ञान लेने आते, भृगु और नारद तो बिचारे अधार्मिक हैं, धर्म के विषय में सर्वथा शून्य है, सनत कुमार, कपिल, मनु ये सब धर्म के विषय में सर्वथा अज्ञानी है, तुम ही एक ज्ञानी आए हो, तुमने ऐसे महान धार्मिक जगदीश्वर के प्रति धारणा बनाई है, हम तुमको श्राप देती है कि जाओ तुम एक आश्री योनि में प्राप्त हो जाओगे, ताकि आगे जाकर कभी महापुरुषों का अपमान नहीं करोगे। चित्रकेतु ने देखा कि माता बिगड़ गई, नाराज हो गई, तत्काल वो विमान से नीचे उतरा और आता आकर के और पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया। पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगा कि देखो पार्वती जी, माता जी, मैं साप को मिटाने के लिए आपके पास नहीं आया हूं। मैं आपकी वाणी सुनकर अपार प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए आपके पास आया हूं। बहुत अच्छा किया आपने। माता जी, चाहे हम असुर योनि में चले जाएं, चाहे हम और ऊंचे देव योनि में चले जाएं, चाहे हम कहीं भी भटकते रहे, सुख और दुख तो हमारे मानने से भोगा जाएगा और हमारे नहीं मानने से नहीं भोगा जाएगा। आप असुर योनि में इसीलिए तो भेज रहे हो कि हम दुख उठावे। नहीं महाराज, वहां क्यों हम दुख उठावेंगे? नहीं वह आत्मा न परश्चापी कर्तास्या सुख दुखयो कर्तारम मन्यते अप्राग्य आत्मानम परमेव च। महाराज, ये आत्मा ही सुख और दुख से सर्वथा परे है, अतः जो कर्ता नहीं बनता तो वो भोगता भी नहीं बनता। आप चाहे साप देवे चाहे कृपा करें, दोनों में हमारे स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। हाँ, ये बड़ा अच्छा किया कि आपने साप दिया, तो आइंदे कोई मेरे जैसी गलती दूसरे लोग नहीं करेंगे। बड़ा अच्छा किया है। एक मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कष्ट मत पाओ, दुखी मत हो, और मैंने कोई आपको कष्ट दिया है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और आप मेरे साप को वापस लौटाओ ये मत करो। आप साप दिया है, उस साप के आप हमें भोगने दो। ऐसा उसने कहा। कहते ही शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान पहले भी कुछ नहीं बोले और शंकर भगवान अभी भी कुछ नहीं बोले। देखो, असली वक्ता कौन होता है कि जिस वक्ता का भरी सभा में अपमान कर दिया गया, फिर भी शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, और आकर के माफी मांग ली तब भी शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, चित्रकेतु से कुछ भी नहीं कहा, सर्वथा उदासीन रहे। अरे, उदासीन तत्व की व्याख्या चल रही है, उस समय में हम बोलने वाले या सुनने वाले भी उदासीन नहीं होंगे तो उस व्याख्या का अर्थ क्या निकलेगा। इसलिए शंकर भगवान बिल्कुल चुप रहे, शांत रहे। और जब चित्रकेतु वहां से चले गए, तब शंकर भगवान ने पार्वती से कहा कि पार्वती जी, आप रोज रोज हमको कहते हो कि विष्णु के भक्तों को आप इतना क्यों चाहते हो? तुम विष्णु भक्तों का बहुत पक्ष लेते हो, आज तक तुमने हमको बहुत उपालंब दिया है। आज देख लिया ना, विष्णु भगवान के भक्त होते हैं वो कितने श्रेष्ठ होते हैं। तुमने साप तो औरों को भी दिया होगा, लेकिन साप सुन करके और साप मेरा निवृत्त मत कर देना, ये शब्द तुमने और किसी से नहीं सुना होगा, ये शब्द केवल विष्णु के भक्तों से सुना है। अविवेक कृत पुंसो यर्थ भेद है इवात्मनि, गुण दोष विकल्पश्च भिदेव सजीवत कृत है। अरे, माला के अंदर तरह तरह की बुद्धि होती है कि सांप है कि डोरी है कि क्या है, ये सब अज्ञान में पैदा होती है बात। लेकिन जिसको स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, भगवान वासुदेव का ज्ञान हो जाता है, वो साप से भी कोई किसी प्रकार से नाराज नहीं होता और अनुग्रह से भी कोई प्रसन्न नहीं होता है। ये देखो भगवान के भक्तों की कैसी विचित्र है कि वे समदर्शी होते हैं, शांत होते हैं, सब जगह अपना ही स्वरूप देखा करते हैं। सर्वभूत प्रियो हरि और संपूर्ण प्राणियों से प्रेम करने वाले भगवान अपने भक्तों में ऐसी शक्ति दिया करते हैं। देखो पार्वती, साप तुमने भी दिया है, तुम्हारे में जैसे साप देने की शक्ति मुझसे आई है, ऐसे चित्रकेतु में भी साप देने की शक्ति विष्णु से आई हुई है, परंतु उसने साप नहीं दिया, साप स्वीकार किया। एतावत साधु लक्षणम, यही संतों का लक्षण है, यही भक्तों का लक्षण है। वो स्वयं कष्ट दे स्वीकार कर लेते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं देते हैं। पार्वती जी चुप हो गई। वाह महाराज, भगवान के भक्त बड़े दिव्य होते हैं। परीक्षित, उस पार्वती का साप पूरा करने के लिए वही चित्रकेतु असुर बनकर के वृत्रासुर के रूप में विख्यात हुआ और उसी की भगवान में ऐसी निश्चल भक्ति हुई थी। ये तुमने हमसे कारण पूछा सो बता दिया है। बड़ा पवित्र ये आख्यान है चित्रकेतु का। जो भी कोई प्रातःकाल उठ करके श्रद्धा से इसको सुनता है, वह धक्के से परम गति को प्राप्त हो जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की सयाति परमांगति। जैसे किसी को गेट पर चला जाए घुसना न दे वो धक्के से घुस जाता है, ऐसे वो आराम से घुस जाया करता है। व्याख्या चल रही थी कि दिति के बेटों की बात थी, व्याख्या थी दिति के और कौन कौन बेटे हुए, उनका क्या वंश चला। तो कहते हैं दिति के सविता बेटा पृष्णी नाम की उनके स्त्री सावित्री व्याहृति स्त्री ये उनके पैदा हुए। भक्त के सिद्धि नाम की पत्नी थी, धाता के कुहु सिनीवाली राका और अनुमति ये चार पत्नियां थी। सायम दर्श प्रात और पूर्णवास ये इनके लड़के हुए। कहते हैं कि इससे अग्निया पैदा हुई और वरुण के चर्षणी पैदा हुई, इसी वरुण के अगस्त भी पैदा हुए, वशिष्ठ जी भी पैदा हुए थे मित्रा वरुण के, और वाल्मीकि जी भी इनसे पैदा हुए थे। अब हम तुमको दिति के कुछ और वंश की बात सुनाते हैं। देखो दिति के दो लड़का हुए हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष। हिरण्यकश्यप के कयाधु नाम की स्त्री थी जिससे संराध अनुराध राध और प्रराध ये चार संतान हुई। कहते हैं उनके एक बहन थी सिंगिका जिसका लड़का हुआ राहु और विप्रचित का वो बेटा था। कहते हैं भगवान ने एक बार शिरोहरद यस्य हरिश्चक्रेण पिबतो विरुद्ध, राहु वही है कि भगवान ने अपने चक्र से उसका सिर काटा था जो कि अमृत पीने के लिए बैठ गया था, इसकी कथा आगे आएगी। कहते हैं राध के धमनी भारिया थी, उसके वातापी और इलवल हुए जो अगस्त ऋषि के कारण से फिर समाप्त हो गए। इस प्रकार से इनका वंश चला है। अनुराध के वाष्कल हुआ और विरोचन था वो प्रहलाद के बेटा था, और उस विरोचन के बलि पैदा हुए, बलि के बाणासुर हुए, भगवान शंकर को उसने प्रसन्न कर लिया, अतः शंकर भगवान बाणासुर की राजधानी की रक्षा में रहते थे। उसी दिति के मरुदगण पैदा हुए, मरुत पैदा हुए जो आगे जाकर देवताओं के पक्षपाती हो गए। राजा ने कहा महाराज ठहरिए, दिति के बेटा देवताओं के पक्षपाती बन जाए बड़ा आश्चर्य है, बताइए इस विषय में क्या कथा है। कहते हैं देखो जिस समय में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप की भगवान विष्णु के द्वारा सदगति हो गई तो दिति बड़ी दुखी हो गई। उसने अपने पतिदेव की बहुत सेवा की, पतिदेव उस समय में तपस्या कर रहे थे, बहुत उनकी आराधना की, बड़ा उनको प्रसन्न किया। और उसके बाद सेवा से प्रसन्न होकर के कश्यप जी ने कहा दिति तुमने हमारी बहुत सेवा की, कोई वरदान मांग लो। पति रे वही नारीणाम देवतम परमम स्मृतम, स्त्री के लिए पति ही सब कुछ देवता है, पति ही सर्वेश्वर होता है, और तुमने पति की सेवा की, मेरी सेवा की, सब देवताओं की पूजा हो गई, सब की पूजा हो गई, तुम कोई मेरे से वरदान मांग लो। बड़े प्रसन्न हो गए थे वे। दिति ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं मेरे पर तो आप एक ऐसा बेटा दो जिससे इंद्र की मृत्यु हो जाए, इंद्र को मारने वाला बेटा होना चाहिए। कश्यप जी एकदम अवाक रह गए। कश्यप जी ने देखा कि ओहो आदमी थोड़ी सी सेवा से राजी होकर कितना बिक जाता है, स्त्री के अंदर अपने आप को बेच लेता है। शरदो शरद पद्मोत्सवम वक्त्रम वचश्च श्रवणामृतम, इन स्त्रियों के मुख है वो शरदकालीन पद्म के समान, कमल के समान दिखने में बड़े अच्छे दिखते हैं, वाणी है बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इनके हृदय को देखो तो क्षुरा धारावम, क्षुरे की धार के समान बड़ा कठोर, ऐसी ऐसी हृदयों ऐसी ऐसी स्त्रियों का ये हृदय है कि जिससे पति के विपरीत बात कहती है, जो पति की सेवा नहीं कर, सेवा किसी न किसी कामना को रख करके करती है, उनकी बात है। मन में बड़ा कष्ट हुआ कश्यप जी के, देखो इंद्र को मारने वाला बेटा हो इस भावना से मेरी सेवा की, मैंने वचन दे दिया अब करूं क्या। तो कहा अच्छी बात है, जैसा पात्र होता है उसको वैसा ही साधन बताया जाता है। कश्यप जी ने कहा देखो इंद्र को मारने वाला तुम्हारे बेटा हो जाएगा, 12 महीने का तुमको एक मैं अनुष्ठान बताता हूं, स्वीकार है कि इंद्र का या इंद्र मर जाए इंद्र को मारने वाला मेरे बेटा हो, ऐसा यदि 12 महीने का अनुष्ठान भी आप बताओ तो कोई बात नहीं, पर बेटा मेरा ऐसा होना चाहिए इंद्र को मार दे, क्या हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि 12 महीने के अनुष्ठान में कमी नहीं आनी चाहिए, कमी नहीं आने दूंगी। तो देखो भाई, न तो किसी प्राणी की हिंसा करना, न किसी के सामने झूठ बोलना, न किसी को शाप देना, न नाखून काटना, न रोम काटना, न अमंगल वस्तु का स्पर्श करना, न जल के अंदर डुबकियां लगा लगा करके स्नान करना, न किसी के ऊपर कुपित होना, न दुष्टों से बात करना, बिना धोए कपड़े मत पहनना, और कभी मलान माला नहीं पहनना, माने बासी माला मत पहनना, चंडिका का अन्न मत खाना, उच्चिष्ट अन्न मत खाना, मांस मत खाना, इस प्रकार से सब अनुष्ठान थे। वो बताए संध्याया मुक्त मुहूर्त, संध्या के समय में बाल बिखेर करके और मत सोना, अनर्चिता अनर्चिता असंयता अभाग, अपने वाणी को कभी भी संयमहीन से मत बोलना, बड़े सावधानी से बोलना, और कभी भी बिना पैर वगैरह धोए पवित्र हुए बिना सोना नहीं। सहित ना परांगनानी न नग्ना न तो संध्या, संध्या के समय में सोना नहीं। इस प्रकार से कई प्रकार के नियम बता दिए। कहते हैं एक साल तक इन नियमों का पालन करोगी तो शक्रहा भविता सुतः, तुम्हारा बेटा इंद्र को मारने वाला होगा। क्या अच्छी बात, स्वीकार कर लिया। इंद्र को मालूम चला कि मेरी जो सौतेली माँ है वो मुझे मारने के लिए बेटा प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है। इंद्र आया माँ के पास कि माँ दीति जी, कि हाँ बेटा, मैं कुछ दिन आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। क्या अच्छी बात है, रहो। देखो माँ, कई दिन हो गए मैं उस अदिति की तो बहुत सेवा करता हूँ, तुम भी तो मेरी माँ हो, तुम्हारी सेवा में मुझे रख लो। दीति ने देखा कि मैं बहुत होशियार हूँ, इंद्र ने देखा कि मैं बहुत होशियार हूँ, दोनों एक दूसरे की बात को जानते थे, लेकिन ये जानते थे कि मेरी बात ये नहीं जानता, वो जानते थे कि मेरी बात ये नहीं जानते। इंद्र आए सेवा में, रोज वे जंगल से फल लियावे, फूल लियावे, समिधा लियावे, तरह तरह की चीज ला ला करके उनको देवे, खूब सेवा करे। इंद्र घबराया कि भाई 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना बीत गए, मेरी माँ के नियम में जरा सी भी कमी नहीं आई है। चिंताम तीव्राम गत शक्र केन में शायद शिवम, अब मेरा कल्याण कैसे हो, मेरी बात कैसे बने, जब ये कुछ गलती करे तब ना बने, मेरी माँ तो कुछ गलती कर ही नहीं रही है। ऐसे समय में एक दिन की बात है, देखो व्रत जितना लंबा बताया जाता है तो समाप्ति के समय में व्रत का पालन करने में वो उत्साह नहीं रहता जो उत्साह प्रारंभ के समय में रहता है। तो ऐसा करते करते 12वां महीना लगा, लगते लगते 5, 7, 8, 10, 15 दिन निकल गए। अब बाकी के जो 15 दिन थे वो निकलने उसके लिए बड़े कठिन हो गए। इसलिए एक दिन की बात है कि संध्या के समय में वो व्रत से तो कर्षित थी, साल भर का जो नियम लिया इस कारण से पालन करते करते बहुत थक गई थी, तो वो भोजन करके और फिर उसके बाद हाथ मुंह धोए बिना ही वहां पर बैठी थी, बाल उसके बिखरे हुए थे और उसको नींद आ गई। सुस्वाप विधि मोहिता, देखा जाए तो वो विधाता ने उसको मोहित किया, यूं नींद आने लग गई, खर्राटे भर करके सोने लग गई। अब नींद आती है तो भाई किसी का मुंह खुला रहता है, तो उनका मुंह यूं खुला था, मुंह खुला था तो इंद्र उसके मुंह में से चला गया। इंद्र उसके मुंह में जाकर के और पेट में बैठ गया, और पेट में बैठ करके जो गर्भ था उस गर्भ के टुकड़े करने चालू किए, 7 टुकड़े कर दिए। अब 1 के 7 टुकड़े किए तो वो रोने लगा गर्भ, रोने लगा तो कहा मारुत, रोमत रोमत रोमत, ऐसे मारुत कर दिया तो उनका नाम मारुत हो गया। फिर एक एक के फिर 7-7 टुकड़े कर दिए तो 49 हो गए, और एक ये इंद्र था 50वां। भगवान वासुदेव की कुछ ऐसी कृपा थी, उनको करना ही कुछ ऐसा था कि वो गर्भ मरा नहीं। न बमार दितेर गर्भ श्रीनिवासानुकंपया। अब 1 साल के बाद जब वो गर्भ बाहर आया तो 1, 2, 3, 4, 10, 20, 45, 46, 47, 48, 49 और 50 एक साथ पैदा हुए।